ओम शांति। अभी भाई छोटा क्लास कराएंगे, टॉपिक है मरो हे जोगी मरो। दुनिया में एक वो होता है आर्ट ऑफ लिविंग, सुना है ना, वो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और बाबा हर रोज हर रोज मरने की कला सिखाते हैं, और इतनी बार बाबा मार देता है कि फिर जब फाइनली वो पॉइंट आएगा तो कोई भय नहीं। एक मुरली में बाबा ने कहा था, सत्युग में जाकर के कहें कि जीवन मुक्ति की अवस्था है, नहीं, यहां पर अभी अभी संगम युग पर ही जीवन मुक्त बनना है। और उसके लिए जो बाबा हमको कहता है कि मरो, क्योंकि कभी ऐसा फील होता है जैसे ये आत्मा है और उसके ऊपर गिफ्ट रैपर बॉक्स रैपर बॉक्स रैपर बॉक्स रैपर बॉक्स, और वो डायमंड जैसे अंदर छिप गए, और इतने सारे अक्वायर्ड जो लेबल्स हैं वो सबको हम भूल जाएं और केवल वो डायमंड याद रहे, तो वो बाबा जैसे मेहनत हम पर कर रहा है। तो भाई उस पर डिटेल में उस क्लास को स्पष्ट करेंगे।
जंगली बंदरों के ग्रुप से एक बार एक बंदर शहर में आ जाता है, और शहर में आकर वो बंदर एक सत्संग में चला जाता है, और उस सत्संग में वो बंदर सुनता है कुछ अच्छी ज्ञान युक्त बातें। वो सुनता है कि मनुष्य को चाहिए कि बीच बीच में उपवास करे, नहीं तो हम भी बंदरों के जैसे हो जाएंगे, सारे विकारों से भरे। तो ये बात सुनकर उस बंदर को बहुत बुरा लगता है कि हमारा क्या इंप्रेशन है मनुष्य पर, और वो जाता है वापस जंगल में और अपने बॉस से कहता है, दिस इज टू मच, हमें भी कुछ करना चाहिए, कब तक हम इस तरह से असंयमित जीवन जिएंगे, हमारे जीवन में भी कुछ संयम है या नहीं है। तो बॉस कहते हैं फिर क्या करना चाहिए, वो कहता है कि बहुत हो गया ये खान पान, हम भी अब उपवास रखेंगे। तो सर्वमतों से यह प्रस्ताव पारित होता है कि एक दिन उपवास रखा जाए। तो सभी बंदर ये सोचते हैं कि हम उपवास रखेंगे और उस दिन मेडिटेशन ध्यान करेंगे, बहुत हो गया ये भोगी जीवन, अब हमें भी योगी बनना है। तो वो सभी बंदर मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। उसमें से एक छोटा सा बंदर होता है, बाल ब्रह्म बंदर, तो उसका नाम होता है छोटू। तो सभी जब ध्यान में बैठते हैं तो वो अपनी एक आंख खोलता है और देखता है ऊपर केले लटके हुए हैं। तो उसकी मां कहती है, बिल्कुल आंख बंद करो, ध्यान चालू है, पहले ही बहुत शरारती हो। पर वो कहता है, मेरा एक सजेशन है, क्या मैं वो केला अपने हाथ में रख सकता हूं? तो मां कहती है, बिल्कुल नहीं। दोनों का आवाज सुनकर बंदरों का मुखिया पूछता है, उधर क्या हो रहा है? वो कहती है, ये कह रहा है कि केला हाथ में रखा जाए क्या, खाऊंगा नहीं, उपवास जारी रहेगा, ध्यान भी जारी रहेगा। तो वो मुखिया सोचता है, चाहे सजेशन छोटों से भी आ जाए, वर्थ कंसिडरिंग, क्योंकि उपवास तो नहीं टूटेगा, तो क्यों ना रखा जाए। तो सब लोग मान लेते हैं, हाँ ठीक है। तो सभी बंदर अपने अपने एक एक हाथ में एक एक केला ले लेते हैं, खाना नहीं है। पर थोड़ी देर के फिर ध्यान फिर चालू होता है। थोड़ी देर के बाद वो छोटू फिर से आंख खोलता है। एक मां कहती, अब क्या है? वो कहता है बंदर, वो बच्चा कहता है मैं खाऊंगा नहीं, पर इसके जो छिलके वो छील सकते हैं क्या? खाना नहीं है, उपवास जारी रहेगा, ध्यान भी जारी रहेगा, खाली छिलके मुझे छिलके हाथ में रखता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, पूरा रखो या छिलके रखो। तो बॉस तक ये बात जाती है, वो मुखिया कहता है चलो ये भी ठीक है क्योंकि खा तो नहीं रहे ना, उपवास जारी है तो क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी देर के बाद वो छोटू फिर से एक आंख खोलता है, वो अपनी मां से कहता है क्या मैं ये केला अपने मुंह में रख सकता हूं, खाऊंगा नहीं, उपवास जारी रहेगा। तो मुखिया कहते बात तो सही है क्योंकि उपवास है, खाना नहीं है, और उपवास जारी रहेगा, ध्यान भी जारी रहेगा, खाली मुंह में रखना है। तो सभी बंदर अपने अपने मुंह में केला रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो छोटू फिर से आंख खोलता है और कहता है मां केला तो पेट में चला गया। सारे बंदर अपने पेट पर हाथ घुमाते हैं कि सबका अंदर चला गया। तो वो मुखिया बहुत खुश होते हैं कि हमने आज एक नई खोज की है कि अगर केला मुख में रखा जाए तो वो पेट में चला जाता है अपने आप, और वो बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसी ये कहानी है, यूज नहीं करेंगे पर चाहिए। और वो कब हाथ में आ जाता है और कब छिलके निकल जाते हैं और कब मुंह में चला जाता है और कब अंदर चला जाता है पता ही नहीं चलता। भोग इतने सूक्ष्म है कि जो अंदर समा जाते हैं, अंदर उतर जाते हैं, घुस जाते हैं, और बाबा कहता है इन सभी संसार के प्रलोभनों से मर जाओ, मरो हे जोगी मरो, ये मरण है मीठा, ये मरण मीठा है। अगर कोई इस रीति से मरता है तो एक नया जन्म होगा। मर्जी वाचन डाइंग अलाइव अनलेस एंड अनटिल यू डाइव अलाइव यू शैल नॉट एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। बाइबल में लिखा है एक जगह, जब तक तुम नहीं मरोगे मेरी उस दुनिया में नहीं आ सकोगे। एक तरफ हम है और एक तरफ संसार, एक तरफ हम और एक तरफ संसार के प्रलोभन, एक तरफ हम और दूसरी तरफ संसार खींच रहा है और हम उसमें फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, डूबे हुए हैं। तो वो डाइंग अलाइव मर जीवा जन, जीते जी मरना, इस अवस्था का कैसे अनुभव हो? तो आज हम देखेंगे सबसे बड़ा मरना इस देह से मरना है। जो इस देह से मर गया, देह से अलग हो गया, डिटैच हो गया, बॉडी कॉन्शियसनेस से मर गया, वो वास्तविक मर चुका है। जिसे देह से ही आसक्ति नहीं उसे संसार से आसक्ति हो ही नहीं सकती, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसे हम 21 सूत्र देखेंगे, 21 पॉइंट्स टू फॉरगेट द बॉडी, 21 वेज टू गो बियॉन्ड बॉडी कॉन्शियसनेस, 21 वेज टू डाई अलोन अलाइव, मर्जीवा बनने के कुछ सूत्र, कैसे जीते जी मर जाए, संसार में है परंतु यहां है नहीं, सबके बीच में है, सबसे बात कर रहे, सबसे बोल रहे, सबसे व्यवहार कर रहे, सारे कर्तव्य निभा रहे, ये सब कुछ करते हुए यहां है ही नहीं। टू बी इन द वर्ल्ड बट आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्या ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति यहां है, ऊपर से दिख रहा है, ये तो बोल रहा है, ये तो हमारे जैसा ही है, पर हमारे जैसा होता हुआ भी, हमारे जैसा बोलता हुआ भी, हमारे साथ साथ काम करते हुए भी, साधारण से दिखते हुए भी, जैसे ये व्यक्ति है ही नहीं यहां। क्या आंतरिक ऐसी स्थिति बनाई जा सकती है? ऐसा हम क्या क्या करें, कौन कौन से अभ्यास करें? सबसे पहला अभ्यास सूत्र वे मेथड, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास। मैं ये देह नहीं, मैं कुछ और हूं, इस देह से परे की सत्ता हूं। नचवाति भूत संघम, ये जो भूत का संघ है, दिस असेंबलेज ऑफ बॉडी, दिस गैदरिंग ऑफ बोन्स एंड मसल्स, मैं नहीं। तत्वमसि तुम वो हो, ये नहीं। इसका निरंतर अभ्यास, बार बार अभ्यास, इतना अभ्यास कि वो अवचेतन मन तक चला जाए, सबकॉन्शियस माइंड में समा जाए कि मैं ये जो दिख रहा है देह परछाई है, बॉडी क्या है, केवल एक छाया मात्र है, यह सब छाया, प्ले ऑफ शैडोज है, कौन स्त्री कौन पुरुष, कौन क्या कौन क्या, ये जो छाया है इससे मैं प्रभावित नहीं हो सकता, कोई भी छाया मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे कठपुतलिया है मिट्टी की बनी हुई, कोई टूट रहा है, कोई जुड़ रहा है, कोई बन रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, खेल मात्र चल रहा है मंच पर, आत्मा इनसे भिन्न है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, शस्त्र जिसे छेद नहीं सकते, आग जिसे चला नहीं सकती, पानी जिसे गीला नहीं कर सकता, वह मैं अमूर्त अमर्त्य तत्व हूं, डेथलेस, सेक्सलेस, निर्लिंग अलिंग आत्मा हूं, न स्त्री हूं न पुरुष हूं, लिंग से परे मैं वो तत्व हूं। लंबा लंबा समय तक बाबा दादियां जब छोटी थी और जब आबू में आए उनको पहाड़ियों पर भेज देते थे, एक ही समान का अभ्यास करो, मैं अविनाशी आत्मा हूं, बस। गहराई में जाओ, रिपीट नहीं करना है, तोते जैसा पैरट के जैसा, पर अनुभव करना है मैं अविनाशी हूं। शरीर अब है कल नहीं रहेगा, शरीर जन्म ले रहे शरीर मिट रहे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, आत्मा एक गर्भ छोड़कर दूसरे गर्भ में जा रही है, चक्र चालू है, इसे भव सागर कहा गया है शास्त्रों में, यह सागर है जन्म और मृत्यु का, परंतु मैं इन सब से भिन्न हूं, और जैसे मैं आत्मा हूं ये सब भी आत्माएं हैं। ये जान लेना मैं आत्मा हूं इतना पर्याप्त नहीं, इस एक ही शब्द के वाक्य के गहराई में जाना, मैं कौन मैं कौन मैं कौन मैं कौन, मेरी क्या पहचान है, जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट पेसिमिस्ट था, नास्तिक था, रात रात पर भटकने की आदत थी उसकी। एक बार सुबह सुबह 3 बजे एक बगीचे में पहुंच गया, ढूंढ रहा था कुछ, खोज रहा था, तो वहां से माली आ जाता है बगीचे का लालटेन लेकर और पूछता है, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, कहां से आए हो, क्या चाहिए। वो माली पूछता है, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो। वो कहता है, यही तो मैं ढूंढ रहा हूं, यही तो मुझे उत्तर चाहिए, मैं हूं कौन, मैं आया कहां से, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए, किस ओर जा रहा हूं, कहीं जीवन की दिशा दशा से भटक तो नहीं गया। स्वयं स्वयं से पूछना है, मैं कौन हूं, इतने सारे जो दिन भर मैंने रूप धारण कर लिए, क्या वही मैं हूं, क्या यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। एक अमेरिकन एक्टर ने अपनी जीवन कहानी में लिखा आया है, प्लेड सो मेनी रोल्स इन सो मेनी फिल्म्स, इतने सारे मूवीज में मैंने इतने पार्ट प्ले किए हैं, अब मेरे सामने प्रश्न है कि मैं हूं कौन। मुझे स्वयं से ही यह प्रश्न है, क्या वो सत्य है या ये सत्य है। स्वयं स्वयं की खोज, तो पहला है आत्माभिमानी स्थिति, दूसरा परमात्म याद गॉडली रिमेम्बरेंस, शरीर को भूलने में यह बहुत शक्तिशाली अस्त्र है। जो उसकी याद में खोया हुआ है, सारा कुछ अपने आप होता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप स्वतः होता है। उसकी याद इतनी शक्तिशाली है क्योंकि वो स्वयं शक्ति है। शक्ति शक्ति से जब जुड़ती है, शक्ति परम शक्ति से जब जुड़ती है, तो अपने अंदर बल भर जाता है। आत्मा कमजोर हो गई है, कमजोर विचारों ने आत्मा को कमजोर कर दिया है, शक्तिशाली विचार उसको शक्तिशाली बनाएंगे और शक्तिशाली याद उसमें परम शक्ति को भरेंगे। इसके लिए सब एक तरफ और याद में बैठ जाओ, एक वो है और दूसरा मैं, बस। जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर है परमात्मा याद। तीसरा परमात्मा प्रेम, लव ऑफ गॉड, द लव डिवाइन, द सुप्रीम लव। संसार के सारे प्रेम स्वार्थ के प्रेम है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। सब स्वार्थ से लिए प्रेम कर रहे, दिखावा मात्र है। जिसे वो प्रेम कर रहे कह रहे वो वासना मात्र है, देह की भूख मात्र है, और उसे वो प्रेम की संज्ञा दे रहे हैं। लव हैज नथिंग टू डू विथ बॉडी। प्रेम को शरीर से कोई लेना देना नहीं है। क्या हमारा एक दूसरे से, घर परिवार वालों से ऐसा प्रेम है, या देह आधारित प्रेम है? कोई सुंदर है इसलिए प्रेम है, कोई जवान है इसलिए प्रेम है, या आत्मा से प्रेम है? प्रेम किससे है? संसार में सारे प्रेम दैहिक है, अधिकतर, ज्यादा से ज्यादा भावनात्मक, इमोशनल। कुछ कुछ प्रेम इंटेलेक्चुअल प्रेम है, बौद्धिक। कुछ 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 इसलिए है क्योंकि साथ है लंबे समय से, पर क्या वो आत्मिक प्रेम है? आत्मा का प्रेम वास्तव में एक परमात्मा से ही हो सकता है। तीसरा सूत्र है इंक्रीज द लव ऑफ गॉड, ईश्वरीय प्रेम को बढ़ाना। क्या मैं करूं कि जिससे बाबा के लिए अभी जितना प्यार है वो डबल हो जाए कम से कम? यदि हमारा बेटा है और जो विदेश गया है और वो हमें पता चले दूसरे दिन सुबह 3 बजे आ रहा है, तो हम कहेंगे हम तो नहीं जाएंगे, हमारे तो नींद का टाइम है, विदेश से आ रहा है सुबह 3 बजे फ्लाइट लैंडिंग हो रही है, हम कहेंगे नहीं 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 हम तो नहीं जाएंगे, हम हमारा टाइम है उसको वहीं वेट करने दो एयरपोर्ट पर, हम 6 बजे के बाद जाएंगे लेने। जहां संबंध जुड़ जाएगा प्रेम अपने आप होगा और समर्पण होगा और त्याग होगा, व्यक्तिगत सुखों का त्याग करके व्यक्ति अपने प्रेमी के लिए सर्वस्व बलिदान कर देता है। टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर समवन इज द अल्टीमेट सैक्रिफाइस ऑफ लव। जीवन को स्वाहा कर देना जिससे प्रेम है उसके लिए। लेस्ली वेदरहेड नामक एक कवि लेखिका है, उसने लिखा है बहुत सुंदर बात। वर्ल्ड वॉर टू में एक मिलिट्री कैंप है और वहां पर एक सिपाही, एक ऑफिसर अपने ऑफिसर से कहता है कि मेरा दोस्त अभी तक नहीं आया, लेट मी गो इन द फील्ड, मुझे जाने दो। उसका अफसर कहता अरे मत जाओ, क्योंकि जो भी अभी तक गए हैं वो आए नहीं है, शायद वो तुम्हारा जो दोस्त है वो मर चुका होगा और तुम जाना मतलब तुम अपनी जान गवा दोगे। वो कहता नहीं फिर भी मुझे जाना है। बहुत समझाते उसको मत जाओ, फिर भी वो जाता है। जाता है, उसको भी गोलियां लगती है, वो भी घायल होता है और दिखाया है वो अपने दोस्त का डेड बॉडी अपने कंधों पर लेकर आ रहा है और उस मिलिट्री की छावनी तक पहुंचता है और धड़ाम से गिरता है, खुद भी लहूलुहान। मित्र तो मर चुका है। उसका अफसर कहता है देखा मैंने बोला था ना तुमको मत जाओ, मर गए ना अब तुम भी खुद, जीवन व्यर्थ गया ना। वो कहता है नहीं, जीवन व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि जब मैं पहुंचा तो मेरा ये जो दोस्त है वो जिंदा था और उसने कहा जिम, उसका नाम होता है जिम, जिम आई न्यू यू वुड कम, मुझे पता था तुम आओगे। और उसके बाद उसने शरीर छोड़ा। स्वयं का जीवन अर्पण कर देना ये प्रेम है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए। अगला ज्ञान चिंतन। ज्ञान चिंतन हमें शरीर के भान से परे ले जाएगा। एकांत स्थान में संसार में जितने कवि हुए हैं एकांत में बैठकर चिंतन करते थे, कविताएं लिखते थे और कैसी दिव्य विभूतियां, दिव्य काव्य, कालजयी काव्य लिख देते थे। चिंतन वो तो संसार का चिंतन था, ज्ञान का चिंतन तो इतना श्रेष्ठ है कि जो ज्ञान के चिंतन में अंदर गहराई में चला जाए अपने आप देह और देह की दुनिया भूल जाती है। जस्ट बाय जर्निंग, केवल चिंतन से। तो रोज 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा, 1 आवर चिंतन के लिए देना है हर दिन, ज्ञान के चिंतन के लिए। अगला है पांचवा, सेवा में संलग्नता, बिजी हो जाना। इतना सेवा में बिजी हो जाना कि देह ही भूल जाए। देह भूल जाना अर्थात वो जो देह का आकर्षण खींचता है वही भूल जाए। इतना सेवा में डूब गए, दिन रात विश्व की सेवा की का चिंतन है। दादी जान की कभी कभी नींद से उनको जगाते हैं तो कहते हैं रुको रुको मैं अभी मीटिंग में हूं, नींद में ही, रुको रुको मैं अभी टोली दे रही हूं, थोड़ा देर रुक जाओ। नींद में भी टोली देना जारी है, सेवा करना चालू है। इस उम्र में भी दिन रात ख्याल सेवा का। आज सुबह ही दादी 3 बजे पहुंचे विदेश से इधर, और दिन भर में डायमंड हॉल में मुरली, इस उम्र में पार्टियों से ग्रुप से मिले दोपहर में, दिन रात अभी भी सेवा जारी है। और हम थक गए, अभी भी ख्याल रहता है कि किससे मिलूं और किसको कुछ दूं। देने का विचार है निरंतर, निरंतर देने का विचार। तो ये 5 चीजें हैं। उसके बाद में नेक्स्ट 5 शब्द शायद आपने नहीं सुने होंगे, जापान के शब्द है मिजैरू, किक्या जैरू, इवा जैरू, ओमेवा जैरू, शिजैरू। ये 5 शब्द है। इनको कहा जाता है मुख्य तो 3 ही है जो मुरलियों में आता है, 3 बंदर। ये वास्तव में जापान के 3 बंदरों के नाम है। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना करो 4th, और बुरा ना सोचो ओमेवा जरू 5th। ये 5 विधियां है देह भान से मुक्त होने की। क्योंकि जब जब हम आंखों से कुछ ऐसा देख लेते हैं जो नहीं देखना चाहिए था, पहले नहीं था, देह का आकर्षण देखने के बाद वो बढ़ गया। इसके लिए क्या देखा जा रहा है वो देखने में सब आ जाएगा। फिर टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, वीडियो, सब कुछ ऐसी चीजें देखना जिससे देह भान बढ़े, देह की याद आए, तो अंदर देह भान जन्म लेगा, उत्सुकता जागेगी है क्या, और व्यक्ति विकार की ओर आकर्षित होगा, क्यूरियोसिटी, मिजैरू देखना, कि क्या जहरू सुनना, कुछ ऐसी बातें सुन ली संसार के व्यर्थ, संसार के लौकिक, संसार के अश्लील गीत दृश्य देखना और सुनना, विकारों की ओर आकर्षण बढ़ेगा, देहभान से मुक्त नहीं होगा होंगे। इसके लिए मिजैरू, कि क्या जहरू, इवै जहरू बोलना, क्या हम बोल रहे हैं, ऐसा ही कह दिया, ऐसा ही बोल दिया, ऐसी ही हंसी मजाक कर दी। बुरा करना शिजैरू और ओमे वैजैरू, ये 3 बंदर और वैसे 5 बंदर जापान के, तो 3 मंकीज बाबा ने 2 एडिशन कर दिए या 1 एडिशन कर दिया, सोचना। तो देहभान से मुक्त होने के लिए ये 5 बातें चाहिए। ऐसा कुछ नहीं देख लेना, मना कर देना, इच्छा ही ना हो देखने की, ऐसी स्थिति चिंतन विचार महान हो जाए कि ये सब व्यर्थ लगे। संसार का चीप एंटरटेनमेंट इज नॉट फॉर अस। टीचर्स से मुलाकात बाबा ने कभी कहा है, सबने सुना होगा कि संसार के जो एक्टर और एक्ट्रेस है वो हंसा सकते हैं और रुला सकते हैं। टीवी के एक्टर्स, सिनेमा के एक्टर्स क्या कर सकते हैं? हंसा सकते हैं और रुला सकते हैं, और शरीर ही नहीं बना सकते। और शरीर केवल तुम बना सकते हो, वो नहीं। अल्पकाल का मनोरंजन कर सकते हैं, पर क्या वो अशरीरी बना सकते हैं? आंखों में आंसू ला सकते हैं अपनी एक्टिंग से, ऐसे इमोशनल सीन से, पर शरीर से डिटैच कर दे, क्या ऐसा हो सकता है? वो बल केवल योग में है और तपस्या में है। और जब तक आत्मा शरीर से डिटैच नहीं होती, वीक है, शक्तिहीन है। ये भूत प्रेत इतने शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि शरीर से बाहर है। जैसे ही हम थोड़े समय के लिए भी शरीर से डिटैच हो जाते हैं, ऊपर से तुरंत पावर भर जाती है, अनप्रेसिडेंटेड पावर, ऐसी शक्ति, अपरिमित, अप्रत्याशित, जो हमने सोचा भी नहीं था कभी। तो पहली पांच बातें, फिर ये पांच बातें, दस। उसके बाद है सेल्फ हिप्नोसिस, हिप्नोसिस क्या होता है? शांत चेतन मन को शांत किया जाता है और सीधा सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन दिए जाते हैं। हिप्नोसिस जिसको करते हैं उसको बताया जाता है पहले कि देखो तुम्हारी पीठ खुजा रही है, वो थोड़ी देर के बाद खुजली करना चालू करता है। उसको कहा जाता है तुम्हारी नाक से खून बह रहा है और वो एकदम रोकता है, खून है ही नहीं, वो जो जो उसको कहो वो करने लगता है। सम्मोहन, मिसमेराइजेशन, वैसा ही माया ने पहले हमको सम्मोहित कर रखा है। अब हमें उस सम्मोहन से जागना है तो हमको एक दूसरा सेल्फ हिप्नोटाइज करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार विदेश गए अमेरिका में, तो लोगों ने कहा हैव यू कम टू हिप्नोटाइज अस? उन्होंने कहा यू आर ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड, दैट यू आर बॉडी, आई हैव कम टू डी हिप्नोटाइज यू। तत्वमसी, अहम ब्रह्मस्मि, दैट यू आर सोल, बिकॉज यू आर ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड, यू आर बॉडी एंड बॉडी एंड बॉडी एंड बॉडी। शृण्वन्ति विश्वे अमृतस्य पुत्राः, हु आर यू? चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी, अमृतस्य पुत्रा, हम वो है ईश्वरीय संतान। सेल्फ हिप्नोसिस। उसके बाद है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होता है? होश, जागरण, हर चीज होश में करना, हर चीज जागरण में करना। जैसे इस जगह पर गड्ढा है और यदि मैं होश में हूं तो क्या गिरूंगा उसमें? गिरूंगा तब जब मैं बेहोश हो जाऊंगा। गिरते हम तब है जब हम बेहोश होते हैं। देहभान अर्थात बेहोशी, आत्म अभिमान अर्थात होश। होश अर्थात चल रहे हैं तो होश में, खा रहे हैं तो होश में, मैं खा रहा हूं, मैं ये कार्य कर रहा हूं। बेहोश नहीं हो जाना है, क्योंकि बेहोश हुए और माया अटैक। हम याद की भी बात नहीं कर रहे, केवल होश की बात कर रहे। टू बी माइंडफुल, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, 24 घंटे जैसे माइंडफुल। ज़ेन मास्टर हुए थे कभी बोकेज़ो, वो अपने आप से बात करते थे बोकेज़ो और खुद ही उत्तर देते थे यस आई एम प्रेजेंट। तो उनके शिष्य कहते थे आप किससे बात कर रहे हो? खुद ही पूछते हो बोकेज़ो बोकेज़ो और खुद ही कहते हो हां मैं प्रेजेंट हूं। वो कहता है मैं बेहोश हो जाता हूं अपने आप को याद दिलाने के लिए कि मैं हूं, मैं मरा नहीं हूं, मैं बेहोश नहीं हूं, मैं हूं। क्योंकि बेहोश हो गया मतलब कोई ना कोई गलती कर ली, विस्मृति हो गई तो कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। फिर लास्ट में जब वो मरने के करीब था तब उसने ये बोलना बंद कर दिया। शिष्यों ने पूछा, अब आप नहीं बोलते अपने आप को? वो कहता है, अब मैं बेहोश हुई नहीं, अब मैं निरंतर जागता हूं, इसके लिए अब मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। एक भाई है मधुबन में, अपने आईने में उन्होंने अपना नाम लिख के रखा, हे मूर्ख, सामने नाम, जाग। अपने आप से ही बात, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, हे मूर्ख मन, कहां जा रहा है? काम की तरफ, राम तुझे पुकार रहा है। हे मूर्ख मन, अपने मन से बात करना, अरे मूर्ख मन, तुझे होश है कि नहीं? अभी अभी तो भट्टी से आए हो और अभी क्या करने जा रहे हो? हे मूर्ख मन, अभी अभी मुरली सुनी, किसकी मुरली थी, याद है कि नहीं कुछ? अपने आप को से बात करना, अरे मूर्ख मन, कहां भटक रहा है, कहां विस्तार में जा रहा है, तुझे इतनी भी अकल नहीं है? खुद ही से बात करना, होश को जागृत जागरण करेगा। एक जर्मन व्यक्ति भारत आता है और सुनता है एक साधु के विषय में जो झोपड़ी में रहता है, और उसके द्वार पर जाता है, अपना जूता निकालता है, नीचे पटकता है, कोई उद्देश्य नहीं है, और दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। वो कहता है, मैं बहुत दूर से आपसे शिक्षा प्राप्त करने आया हूं, कुछ बताइए। वो कहते हैं, गुरु पहले जाओ और जूते से और दरवाजे से माफी मांगकर फिर आओ। वो कहता है, व्हाट, क्या उनको भी जान होती है क्या? वो कहते हैं, जब तक तुम माफी नहीं मांगो या अंदर नहीं आना, नहीं तो आउट। वो बेचारा जर्मनी से भारत इससे मिलने आया, फिर गया और अपने जूते से माफी मांगे, हे जूते मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे पटका, हे दरवाजा मैंने तुझे जोर से खोला, माफ कर दो। और उसने अपने जीवन में कहानी में लिखा कि मुझे बहुत सुकून का अनुभव हुआ, क्योंकि मैंने वो जो कर्म किया था बेहोशी में किया था। उसने वो जेन मास्टर ने, वो गुरु ने बताया कि तुम हर चीज होश में जब तक नहीं करोगे, मैं तुम्हें शिष्य के रूप में दूंगा ही नहीं। हर चीज होश में करना, माइंडफुलनेस, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स है, आप पढ़ सकते हैं। तीसरा, डाइवर्शन, माइंड को डाइवर्ट कर देना, जो देह की तरफ जाए वहां से उसको हटा के कहीं और तरफ मोड़ देना, उसकी दिशा मोड़ देना, उसको नई दिशा देना कि ये तुमको करना है, ये तुमको नहीं करना है, ये तुम्हारा मार्ग नहीं। किसी ने बहुत अच्छा किसी क्लास में सुनाया था, जिस मंजिल पे जाना ही नहीं है उसका रास्ता क्यों पूछना है? मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट बैठे हुए हैं और वो पूछ रहा है, सड़क में कौन से मटेरियल यूज करने हैं, तुमको क्या करना है सड़क का? वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट देखेंगे, तुम मेडिकल की पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। ईश्वरीय पढ़ाई, ईश्वरीय स्कूल में बैठे हैं, उस विकारों से हमको क्या लेना देना, हमारी मंजिल ही नहीं है, हम क्यों उसके बारे में डिटेल। क्यूरियोसिटी, एक विदेश की बहन हमसे मिली थी बहुत समय पहले, उसने कहा था, क्या तुमको पता है द्वापर से देवता क्यों गिरे? इट इज द क्यूरियोसिटी दैट मेड देम फॉल। विकार क्या है? वो देहभान एक्सप्लोर करने गए और गिर गए। थर्ड, डाइवर्ट। फोर्थ, क्रिएटिविटी, नई नवीनता लानी है, कुछ तो नया करना है, वही 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 पुराने ढर्रे पर नहीं, नवमार्ग, नई खोज, कुछ तो नवीन, नई दृष्टिकोण मुरली को देखने का। हर चीज में क्रिएटिविटी, ज्ञान, GYDS, चारों में क्रिएटिविटी लानी है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में, सेवा में भी क्रिएटिविटी, कौन सी नई सेवा की जाए, कौन सी वो सेवा की जाए जो अब तक नहीं हुई। हर चीज में क्रिएटिविटी लाते ही देहभान से हम ऊपर उठते जाते हैं। और पांचवा है विजुलाइजेशन, पांचवा अर्थात पंद्रहवा, विजुलाइज करना है, क्रिएट करना है विजन, देखना है स्वयं को, असंभव को देखना है, और वो ऐसे देखना जैसे कि आसमान में अंगार से लिखे हुए शब्द है। रोज देखना, जो बनना है, जो पाना है, जो होना चाहिए, उस विजन को क्रिएट करना है। सुबह की मुरली, मैं मां गणेश हूं, विघ्न विनाशक हूं, अगर ये सोचोगे कि विघ्न है विघ्न है विघ्न है तो विघ्न और गिरेंगे, तुमको गिराएंगे और गिरेंगे जीवन में। सोचो मैं विघ्नों से मुक्त हूं, ये पांच। अगला है त्याग, तपस्या और वैराग, सब एक साथ, 17वीं पॉइंट। जब तक जीवन में त्याग नहीं, देहभान से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जब तक वो वैराग नहीं इस संसार से, घर घर तो क्या, सारी दुनिया ही नरक है। कल की साकार मुरली थी, रो रो नरक है, क्या इससे लगाओ, क्या इससे आसक्ति, क्या इससे पाए और क्या पाया अब तक भी, सब कुछ करके निष्पत्ति क्या है, जीरो। दिन भर भाग रहे हैं संसार में, क्या मिला, हाथ तो खाली है, रिक्त है। ये आपाधापी, ये दौड़ धूप किस लिए, क्या निष्पत्ति है, क्यों मैं भाग रहा हूं। स्टॉप स्टैच्यू। उसके बाद देहभान से मुक्ति का एक मार्ग है आसन। सुबह भी इसकी चर्चा की थी, आसन 18वां आसन। जिसने शरीर को जीता वो देह को भी, वो स्वयं देहभान से मुक्त होता है। ये भी एक विधि है आसन। अगला प्राणायाम। जिसने प्राणों को जीता वो भी धीरे धीरे मदद करेगा। ये सब एक्स्ट्रा बातें हैं, वो नहीं है तो भी चलेगा, पर अगर हो तो एडिशन फायदा होगा। उसके बाद है 19, नॉट टचिंग द बॉडी। ये पॉइंट बहुत सोच समझ के लिया गया है, अपने शरीर को हाथ लगाना, दूसरों की बात नहीं कर रहे, स्वयं के, सारे जगत के युवक, मेल्स फीमेल्स, एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त है, मास्टरबेशन एडिक्शन बन चुका है उनके लिए। स्मोकिंग से छूट जाते हैं, अल्कोहल से छूट जाते हैं, इससे नहीं छूट पाते, एडिक्टिव है। घर परिवार नष्ट हो रहे हैं और इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है, पर उसमें डूबे हैं जरूर, और वो देहभान का रूप है। विकार में नहीं जा रहे, पर ये भी विकार से कम नहीं। वो देह की क्रिया है, ये मन की क्रिया है। उसके बाद 20वां प्रकृति, निसर्ग, नेचर, निसर्ग के सानिध्य में चले जाना, लंबा लंबा समय निसर्ग के साथ बात करना, बादलों के साथ वहां बैठकर चिंतन करना, ब्रह्मा बाबा ज्ञान में बाबा की प्रवेशता से पहले भी लंबा लंबा समय पर तट पर जाकर बैठते थे समुद्र के और चिंतन करते थे विश्व का, क्योंकि प्रकृति में जाते ही माइंड खुल जाता है। घर में चिंतन करना और प्रकृति में चिंतन करना बहुत अंतर है। एक है कमरे में बैठ के चिंतन करना, एक है खुले आकाश में चिंतन करना। नई पॉइंट्स आएगी, नई पॉइंट्स इमर्ज होगी, नई बातें पता चलेगी, नया विचार, नया दृष्टिकोण, नई वृत्ति, नई दृष्टि, सब कुछ नया फ्लो होगा। जैसे बाढ़ आएगी नए विचारों की, कमरे में तो अकाल पड़ा हुआ है विचारों का, वही वही विचारों में इतने सालों से घूम रहे, कैसे निकले इससे बाहर, प्रकृति का सहारा लेना है। और लास्ट 21 स्वास्थ्य, शरीर यदि स्वस्थ है तो देहभान से मुक्त हो सकते हैं। यदि शरीर में बीमारी है, सिर दर्द हो रहा है, क्या आत्माभिमानी बन पाएंगे? पेट दर्द हो रहा है, आत्माभिमानी बनो? कहां बनते हैं? 104 बुखार और कोई कहे अब आत्मा समझ के बाप को याद करो, दिमाग शरीर आत्मा जाती नहीं ऊपर। स्वास्थ्य, हर एक को स्वयं स्वस्थ रहने के उपाय खोजने हैं। और स्वास्थ्य की एक सबसे अच्छी परिभाषा जो किसी मेडिकल की किताब में नहीं दी है, शरीर का विस्मरण अर्थात स्वास्थ्य। जैसे यहां दर्द हो गया उंगली में तो शरीर की याद है, उंगली की याद है, यह स्वास्थ्य नहीं है। अभी दर्द नहीं है तो क्या मैं आपको याद कर रहा हूं? नहीं याद कर रहा हूं। यह स्वास्थ्य की परिभाषा है। जबकि शरीर का भान ही नहीं, ये रियल हेल्थ है। तो ऐसी ये 21 पॉइंट्स है देह से मर जाने की, देहभान से मुक्त हो जाने की। इसमें से एक भी की जाए पूर्ण रीति से, मनोयोग से, तो अभी जितना बढ़ता देहभान है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं तो ये देहभान हाथ में ले लूं तो क्या फर्क पड़ता है, छिलका निकाल लूं तो क्या फर्क पड़ता है, और मुंह में भी केला चला गया और कब पेट में चला गया और हाथ कब घुमा रहे पता ही नहीं चला। तो ऐसे स्वयं को इस देहभान से मुक्त करना है। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहली बात बताई आत्माभिमानी, दूसरी बात परमात्मा याद, परमात्मा प्रेम, चौथी ज्ञान का चिंतन, पांचवा सेवा में संलग्नता, सेवा में बिजी हो जाना, फर्स्ट फाइव। उसके बाद में फाइव वाइस मंकीज ऑफ जापान, सी नो इविल, हियर नो इविल, स्पीक नो इविल, डू नो इविल एंड थिंक नो इविल, ये पांच। उसके बाद में सेल्फ हिप्नोसिस, आत्म सम्मोहन। उसके बाद में अवेयरनेस टेक्निक्स। आप सबको एक होमवर्क दे रहे हैं, माइंडफुलनेस क्या होता है इस पर थोड़ा रिसर्च करना है हर एक को। व्हाट इज माइंडफुलनेस, व्हाट इज अवेयरनेस, होश में जीना अर्थात क्या। उसके बाद में डाइवर्ट, माइंड को डाइवर्ट करना सीखना है, कहां डाइवर्ट किया जाए, रोकना मुश्किल है, गंगा को कैसे रोके, डाइवर्ट करो उसको। उसके बाद क्रिएटिविटी, हर चीज में क्रिएटिविटी लानी है। विदेशी लोग मुरली कैसे लिखती है दिखते हैं देखा, वो डायग्राम बनाते हैं मुरली सुनते सुनते। क्लास कोई सुन रहे हैं तो पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, फ्लो चार्ट एक बीच में लिखेंगे, जैसे अभी जो बताया बॉडी कॉन्शियसनेस, बीच में एक एरो इधर क्रिएटिविटी, दूसरा एरो सेल्फ हिप्नोसिस, पूरा डायग्राम बना देते। बहुत क्रिएटिविटी, कुछ कुछ नए नए मुरली सुनने बैठते तो चार पांच स्केच पेन वहां रहते हैं, अलग अलग कलर से मुरली लिखते हैं, क्रिएटिविटी है। अगला विजुअलाइजेशन, न्यू विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, क्रिएटिव इमेजरी इसको कहा जाता है। इस पर किताबें लिखी है लोगों ने, कैसे विजुअलाइज करना, कैसे डिटेल में देखना एक एक चीज को मन की आंख से। उसके बाद त्याग, तपस्या और वैराग। उसके बाद आसन, प्राणायाम, नॉट टचिंग द बॉडी, ये तीन बातें। उसके बाद में प्रकृति का सानिध्य एंड लास्ट स्वास्थ्य। तो ऐसी 21 पॉइंट्स का पैकेज है देहभान से मुक्त होने का। अच्छा, ओम शांति।